चाय के समय हुए हंगामे के बाद नाश्ता शांति से हुआ था। आहाना की देखरेख में अंतरा ने अच्छा खाना बनाया था, जिसकी तारीफ सभी ने की थी। बस रूपाली जी की कड़वी जुबान जहरीले तीर छोड़ने से बाज नहीं आई थी, पर अंतरा ने उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था। सबकी पसंद के साथ साथ उसने अपनी जीजी की पसंद का भी खास ख्याल रखा था। अभिजीत जी, अक्षय, आहाना, अन्वय सबने उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया था, बस रूपाली जी ताने देकर रह गईं। अन्वय, तुम आज दुकान से जरा जल्दी आना, मुझे कुछ सामान लेने मार्केट जाना है। अन्वय शोरूम के लिए निकल रहा था जब अंतरा ने उसे जल्दी आने को कहा। अन्वय ने तो मुस्कुराकर हामी भर दी, पर गुस्से से भरी बैठी रूपाली जी तुरंत ही बोल पड़ी, क्या सामान लाना है अब तुम्हें बाजार से? कल ही तो अपने मायके से लौटी हो, जो लाना था वहां से नहीं लेकर आ सकती थी? उनके सवाल के जवाब में अंतरा ने उन्हीं के अंदाज में उन्हें करारा जवाब दिया, क्यों सासू माँ, अपने मायके से क्यों लेकर आती? शादी मुझसे मेरे घर वालों ने नहीं, आपके बेटे ने की है, तो मेरे खर्चों के साथ नाज नखरे भी वही उठाएगा, और मैं अपने पति के साथ शॉपिंग पर जाने की बात कर रही हूँ, आपको इतना दुख क्यों हो रहा है? पापा जी भी तो आज तक आपकी सब जरूरतें पूरी करते हैं, मेरे पति मुझ पर खर्च करेंगे तो आपके पेट में मरोड़ क्यों उठ रही है? ये अंतरा थी जिसने चुप रहकर सहना कभी सीखा ही नहीं था, जो दिल में वो जुबान पर। ऐसा जवाब दिया उसने उन्हें कि उनकी बोलती बंद हो गई। उनसे निपटने के बाद अंतरा ने निगाहें एक बार फिर अन्वय की ओर घुमाई और उसे घूरते हुए बोली, अगर अपनी माँ जैसे तुम्हें भी मेरा खर्च उठाने या मेरे साथ मार्केट जाने में कोई एतराज़ है तो अभी ही बता दो, मैं जीजी को साथ लेकर खुद ही चली जाऊंगी। माँ का सारा गुस्सा और खुन्नस बेटे पर उतर गया था। बेचारा अन्वय फटी आंखों से अचंभित सा उसे देखता ही रह गया, जैसे अपना कसूर जानने की कोशिश कर रहा हो, जिसकी सजा उसे सुनाई गई थी। वह अंतरा की बात का कुछ जवाब देता, इतने में अपने अपमान और क्रोध से बिलबिलाई रूपाली जी फिर बोल पड़ी, हाय भगवान, ये कैसी बहू हमारे घर भेज दी आपने, जिसे इतना भी नहीं पता कि पति की इज्जत कैसे की जाती है, कैसे बात करते हैं, कैसे बेशर्मो जैसे तू तड़ाक से बात करती है ये अन्वय से, उसके आगे आवाज ऊंची करती है, जरा भी तमीज, तहजीब और संस्कार नहीं उनमें? संस्कार तो मुझ में इतने हैं कि आप जैसी दुष्ट सास को भी इतनी इज्जत दे देती हूँ मैं। रही बात मेरे पति की, तो जब उसे मेरे तू तड़ाक से बात करने से कोई परेशानी नहीं, तो आप क्यों बेवजह मुझे कोसने में अपना खून फूंक रही हैं? और आप कौन सी दूध की धूली हैं जो मुझे प्रवचन दे रही हैं? अंतरा ने भड़कते हुए उनके शब्दों के तीर छोड़े और घूरते हुए वहां से चली गई। जाते जाते जो जवाब देकर गई थी वो उन्हें, अन्वय तो बस उसे देखता ही रह गया, जबकि रूपाली जी तो जैसे गहरे सदमे में जा चुकी थी। आहाना, अक्षय और अभिजीत जी पहले ही जा चुके थे। अन्वय भी अपनी बीवी और माँ के बीच के हंगामे को देखने के बाद वहां से चला गया। रूपाली जी जो गुस्से से भरी बैठी थी, उन्होंने अपनी बहन को फोन लगाया। अपनी बहुओं की बुराई उन्हीं से तो करती थी, और अभी तो उन्हें उनके बहुमूल्य सुझावों की बहुत जरूरत थी। वो अपनी बहन के साथ मिलकर अपनी बहुओं, खासकर अंतरा के खिलाफ षड्यंत्र रचने में लगी हुई थी, जब अंतरा वहां पहुंच गई। कुछ देर हाथ बांधे खामोश खड़ी उनकी बातें सुनती रहीं, फिर जब उनकी बकवास बातें सुनकर खींच उठीं, तो झुंझलाते हुए बोल पड़ी, सासू मैया, एक पांव कब्र में लटके हैं तुम्हारे, पर लोक सिधारने की उम्र में लोग भजन पाठ करते हैं, भक्ति में रमते ही अच्छे लगते हैं, क्यों अपनी बहू की चुगलियां करके बेटे बहू के खिलाफ षड्यंत्र रचकर अपना परलोक बिगाड़ रही हो? रूपाली जी अचानक आई उसकी आवाज सुनकर पहले तो चौंकी, फिर उसे वहां खड़े देखकर जल्दी से फोन काटा और आक्रोश भरी निगाहों से उसे घूरते हुए चीख पड़ी, शर्म नहीं आती तुम्हें छुपकर हमारी बात सुनते हुए? अरे काहे की शर्म, जब हमने किसी की बात छुपकर सुनी ही नहीं, हम तो काम से आए थे, अब कान दिए हैं भगवान ने तो पड़ गई बाटे कान में, हम कोई कान लगाकर सुनने तो नहीं आए थे, और हमें क्या शर्म का पाठ पढ़ा रही हैं आप? आपको आती है शर्म अपने घर की बात बाहर बताते हुए, अपनी बहुओं की चुगली लगाते हुए, उनके खिलाफ साजिशें रचते हुए? खुद पर लगे इल्जाम अंतरा से बर्दाश्त नहीं हुए और वो उन पर ही भड़क उठी। रूपाली जी की बोलती बंद कर चुकी थी वो, पर उसकी बात अब भी पूरी नहीं हुई थी। देखो सासू मैया, हम ये पहली और आखिरी बार आपको प्यार से समझा दे रहे हैं, ये जो चुगलियां लगाती फिरती है ना, उसे अब बंद कर दीजिए, जो आपको छह दे रहा है ना, जब आपका घर बिगड़ेगा तो कोई नहीं आएगा संभालने, इसलिए अपने घर परिवार को संवारने में ध्यान दीजिए, बहुओं के खिलाफ ये साजिशें करनी बंद कर दीजिए, आगे यही बहुएं ही काम आएंगी, जब शरीर गिरेगा तो बाहर वाला कोई नहीं आएगा देखने, और अगर बहुओं का जीना हराम करेंगी तो कल को वो भी मुंह फेर कर चल देंगी, फिर रोती रहिएगा बैठकर अपनी किस्मत पर। अपनी नेचर से उलट अंतरा ने बेहद गंभीरता से उन्हें समझाया था, पर कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और जिसकी बुद्धि ही खराब हो उसे कुछ भी समझाने का कोई लाभ नहीं होता। मूर्ख और अहंकारी व्यक्ति को उसका भला चाहने और गलती दिखाने वाला इंसान उसका सबसे बड़ा दुश्मन ही लगता है, और अक्ल उसे अपना सर्वनाश करके ही आती है, यही हाल था उनका। अंतरा की बातें सुनकर उनकी भौहें तन गई, पर इससे पहले कि वो कुछ कहती, अंतरा ने अपना अंदाज बदला और चेतावनी भरी निगाहों से उन्हें देखते हुए दृढ़ गंभीर स्वर में बोली,